Vicente.
मछुआ हरा रहता है, फिशरमैन मछली पकड़ने वाले। वो एक दिन सुबह सुबह नदी पर जाता है मछली पकड़ने के लिए, पर वो बहुत ज्यादा सुबह रहती है, अभी तक सूरज निकला नहीं है, अभी अंधियारा ही है। और चलते चलते उसका पैर टकराता है किसी चीज से और वो नीचे गिरता है। तो देखता है कि एक थैली है, एक झोली है, और जिसमें बहुत सारे पत्थर पड़े। तो पत्थर की झोली को लेकर नदी के पास आता है, क्योंकि अभी सूरज निकला नहीं है, क्योंकि अभी रोशनी हुई नहीं है। तो वहां बैठ जाता है और एक एक पत्थर निकालकर पानी में फेंकने लगता है। वो जो आवाज होती है छपाक, वो सुनकर उसको बहुत आनंद आता है, मधुर लगती है उसको। तो एक एक करके सारे ही पत्थर वो फेंक देता है कि अचानक सुबह होती है, अचानक सूरज निकलता है और अचानक रोशनी होती है। और उसके हाथ में जो पत्थर होता है, जो कि अभी वो फेंकने ही वाला रहता है, उसे दिखता है कि ये तो हीरा है। जैसे ही देखता है उसकी धड़कन बंद हो जाती है, उसका सांस रुक जाती है, जैसे वो देखता है कि ये तो जिसे मैं पत्थर समझकर फेंक रहा था, वो तो हीरे जवाहरात है, हीरे मोती है, हीरे माणिक है। जितनी धन मैंने फेंक दिया, उससे तो अनंत जन्मों तक मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी वो भाग्यशाली है, क्योंकि एक तो हाथ में आया, एक हीरा तो बचा। ऐसे कई लोग हैं जो सारा के सारा खजाना, सारी की सारी धन संपदा पत्थर समझकर फेंक देते। ना तो जीवन में कभी उषा होती है, ना ही कभी सूरज निकलता है, ना ही कभी रोशनी आती है, और ऐसे ही चिल्लाते रहते, दुखी होते रहते। तो ये जो मछुआ, इसका फिर भी भाग्य है, किसने पहचान तो लिया, समय से पहले इसको पता तो चल गया, और एक हीरा तो इसके हाथ में आ गया। बाप का एक एक महावाक्य क्या है, हीरे मोती माणिक। बाप का एक एक महावाक्य, एक एक वर्षन की कीमत कितनी है, लाखों की है। रोज आ रहे हैं और रोज इस मछुआरे की तरह बैठकर हम छपाक की आवाज सुनने में बड़ा मधुर लगता है, एकांत में बैठकर। तो बाप ने तुम्हें कितने सारे खजाने दिए, कितने खजाने दिए, अनगिनत, बेशुमार, बेहद, असीम, अनंत, अखूट, अगण्य। कितने, आधा कलब बैठे बैठे खा सकते, अनेक जन्म तक खा सकते, अनेक तो इतने खजाने प्राप्त है। तो खजानों को कार्य में लगाओ, खजानों को यूज करो, इस्तेमाल करो, उपयोग करो। यही चाबी है इन खजानों की। पहले बाबा कहते थे कि ये खजाने हैं और ये लो चाबी। फिर मूल्यों में, कुछ मूल्यों में है कि खजानों को दरवाजा है ही नहीं, खुले पड़े हैं, जितने चाहिए ले लो, ना दरवाजा है ना कोई चाबी है। तो बाप ने हमको अनगिनत, बेहिसाब, बेशुमार खजाने दिए। इतने खजाने अखूट, कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, पानी धुआ नहीं
नहीं
सकता इस खजानों को, इतने अनंत खजाने हैं। तो क्या कहा आज बाबा ने, बाप को क्या देखकर हर्ष होता है? राज्य का भाग्य, राज्य भाग्य, किंगडम फॉर्च्यून, फॉर्च्यून ऑफ किंगडम, राज्य भाग्य को देखकर बाप हर्षित होते हैं। इतनी सारी संसार में आत्माएं हैं, उनमें से ये इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाप तुलना कर रहे संसार की आत्माओं से और हमारी, उनकी तुलना में ये कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। जिसे संसार किसी ने पसंद नहीं किया, उसे बाप ने पसंद किया। लोगों ने जिन्हें ठुकरा दिया, ये कोई काम के नहीं है, उन्हें बाप ने पसंद किया। कितने खजानों से संपन्न आत्मा है, और इसी संपन्नता के कारण किसकी महिमा है? धान की महिमा। भारत की महिमा, आबू तो है पर भारत विश्व की कब तुलना में भारत की महिमा। भारत जगत गुरु है, विश्व गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, रूहानी है, अलौकिक संपत्तिवान है भारत। ईश्वरीय खजाना, किसी को भी अगर अध्यात्म की खोज करनी है तो लोग भारत में आते हैं। बाबा ने कहा विदेशी लोग इसे महान मानते हैं, क्योंकि तुम महान आत्माएं यहाँ हो, चैतन्य महान आत्माएं यहाँ निवास करती है। महान क्यों मानते हैं? क्योंकि चैतन्य महान आत्माएं यहाँ है। संपत्तिवान क्यों मानते हैं? क्योंकि सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं यहाँ है, सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं भारत में है। किस नजर से भारत की तरफ देखते हैं? अलौकिक संपत्तिवान, सभी शक्तियां भारत में है। जितने धर्म गुरु, जितने अध्यात्म का विकास भारत में हुआ है, उतना इस संसार में कहीं नहीं हुआ है। भारत की जो महिमा है, भारत में जितने वीर पुरुष हुए हैं, भारत वह भूमि है जिसमें तो महान पुरुष, अवतारी पुरुष तो जैसे उसकी गोद में खेलते हैं। इसने अनंत महापुरुष भारत में खान है, ये तो महापुरुषों की, कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक महापुरुष नहीं, कोई कोई एक संत नहीं, कोई एक महात्मा नहीं, कोई एक अवतार नहीं। अवतारों की तो जन्मभूमि है भारत, असंख्य अनंत अवतारों ने यहाँ पर जन्म दिया है, ऐसी श्रेष्ठ भूमि है भारत। ग्रीक की सभ्यता नष्ट हो गई, रोम की सभ्यता नष्ट हो गई, यूनान की सभ्यता छिन्न भिन्न हो गई, परंतु भारत की सभ्यता अभी तक वैसी ही जीवंत है। जबकि भारत पर कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किया, कितने ही लोग भारत में आए, आक्रांता भारत में आए, कितने ही अत्याचार यहाँ पर हुए, कितने ही जुल्म यहाँ पर सहन किए भारतीयों ने, परंतु उसकी सभ्यता को कोई नष्ट नहीं कर सका। ग्रीक आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटेन, इंग्लैंड आए, अंत में अंग्रेज आए, सब ने भारत को लूटा, परंतु सबने लक्ष्य रखा भारत की संस्कृति को समाप्त करने का। मोहम्मद घोरी, उसने तो सौगंध खा ली थी कि भारत संस्कृति को ही नष्ट कर देने की, पर नहीं कर पाए। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, पर क्या भारतीय संस्कृति को जला सका? नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। अक्षुण्य संस्कृति है, अक्षय संस्कृति है भारत की, इसे कोई मिटा नहीं सकता, अमिट है, अमित है। ऐसी संस्कृति केवल भारत की है। जितने महापुरुषों का जन्म यहाँ है और कहीं नहीं है। भारत एक स्त्री देश है ऐसा कहा जाता है, जैसे स्त्री पुरुष होते हैं वैसे देशों में भी स्त्री और पुरुष होते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका वो सब पुरुष देश है, भारत स्त्री देश है। स्त्री कभी आक्रमण नहीं करती है, भारत ने कभी किसी पर भी आक्रमण नहीं किया,
भारत
भारत
माता
ने कभी किसी देश पर विजय नहीं प्राप्त की,
भारत माता कहती
भारत माता है और कोई देश माता नहीं है। जय भारती भारत का गायन है, जय माता भारत का गायन है और किसी देश का ऐसा गायन नहीं है।
वंदे मातरम,
वंदे मातरम भारत का गायन है। भारत देश पर मर मिटने वालों की संख्या जितनी यहाँ है उतनी किसी देश के किसी व्यक्ति ने, किसी देश परस्त व्यक्ति ने अपने देश के लिए उतना ही नहीं किया जितना भारतीयों ने अपने देश के लिए किया, अपने जान की बाजी लगा दी। तो भारत संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की नदियां, भारत की भाषाएं, ये भारत का गौरव, भारत की महिमा है। और जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनके जो महान कर्तव्य थे, उनके पास जो संपन्नता थी, इसी संपन्नता के कारण अलौकिक संपन्नता की नजर से भारत की ओर देखते हैं सब लोग। अध्यात्म की खोज करनी रहे तो कहाँ जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, अमेरिका जाते हैं लोग। जब सिकंदर भारत में आया तो वो भारत के ऋषि मुनियों के पास जाता था उनसे ज्ञान प्राप्त करने। दंडायन बहुत सारे दिखाया है, कल्याण ऋषि, दंडायन ऋषि, एक एक के पास जाता था और उनसे शिक्षा मांगता था, क्या करूं मैं। और वो ऋषि मुनि इतने निर्भय थे कि हंसते थे उस पर, तू व्यर्थ ही संसार में भटक रहा है, तुझे कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। उन्हें कोई भय नहीं था, क्या करेगा ये सिकंदर हमारा। तो इस संसार को, इस धरती को जीत भी लिया तो भी असंतुष्ट रहे, ऐसी सब बातें उसको कहते थे। तो सिकंदर भी जो भी आक्रांता इधर आए, आतताई और अत्याचारी लोग भारत में आए, वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही गए। ये भारत की महानता है, भारत ने कभी कभी आक्रमण नहीं किया, कहीं किसी पर विजय प्राप्त नहीं की, वरन जो लोग यहाँ आए उनको शरण दी। जिनको किसी ने शरण नहीं दी उसको भारत ने शरण दी। ये पारसी लोगों को किसने शरण दी, उधर से भाग कर जब भारत में आए तो भारत ने ही उनको शरण दी, और किसी देश ने शरण नहीं दी। शरणागति गतों की भूमि भी भारत ही है। भारत का इतिहास अमर इतिहास, ऐसा इतिहास और किसी देश का नहीं है। सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई है जितनी थी बाहर की, केवल ये एक सभ्यता जैसी की वैसी बनी हुई। हिंदू धर्म को नष्ट करने का कितनों ने प्रयत्न किया पर नहीं कर पाया नष्ट, क्योंकि ये हिंदू धर्म किसका स्थापन किया हुआ, ये देवी देवताओं धर्म का ही रूपांतरित धर्म है, तो इसका तो ये अविनाशी है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। जितने मंदिर भारत में उतने और कहीं हैं, हो नहीं सकते। शिवालय, विदेश का एक व्यक्ति है मार्क ट्वेन, उसने भारत की बहुत सुंदर महिमा की है। वो लिखता है कि भारत तो मनुष्य जाति का पालना है, क्रिडल, इसमें पला है मनुष्य जाति इस पालने में। भारतीय मनुष्य की जो वाणी है उसका, उसकी जननी है भारत, विभूतियों की दादी है भारत और परंपराओं की परदादी है भारत, ऐसे लिखा है। जो भी महान कार्य देखना है, जो भी महान आत्माएं देखनी है, जो भी महान विभूतियां देखना है, तो भारत में जाओ। हर धर्म को उसने स्वीकार किया है, ये एकमात्र ऐसा देश है कि अनेक धर्म यहाँ पल्लवित हुए। विवेकानंद का जो प्रथम व्याख्यान है शिकागो का, उसमें उसने यही बात कही, ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने रिजेक्ट नहीं किया किसी को भी, सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों को हम स्वीकार करते हैं और सही सभी धर्मों को हम सत्य मानते हैं। एकमात्र ऐसा देश है, मैं यहाँ पर किसी मुसलमान को हिंदू बनाने नहीं आया हूँ, ना ही हिंदू को मुसलमान या क्रिश्चियन को बुद्ध, हम सभी धर्मों को ऐसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है, और ये केवल भारत में ही है। तो बाबा ने कहा, तुम संपन्न आत्माएं हो, तुम्हारी संपन्नता का ही गायन भारत की संपन्नता का गायन है। तुम चैतन्य महान हो, इसके लिए विदेश भी भारत को महान समझता है। बाबा हमारे ऊपर डाल रहा है, भारत की महिमा, परंतु उसका भी कार्य है, वो यहाँ आया ना, इसके लिए भारत की महिमा है। उसने इसको स्वर्ग बनाया, इसके लिए भारत की महिमा है।
परम धाम से मैं आता,
उसका भी काम है और हमारा भी, तो हम दोनों के वजह से। भारत कितना छोटा सा देश है, परंतु कितनी महिमा है उसकी। तो बाबा ने कहा, आगे क्या कहा, जो खजाने बाप ने दिए हैं वो क्या कहा आगे बोलो ना। सदा स्मृति में रहते ये सारे खजाने, सदा तृप्त संपन्न उपमाए हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसके पास खजाने संपन्न है उनकी आंखों के सामने एक बाप रहता है और खजाने रहते हैं। बाप ने सबको समान खजाने दिए हैं, किसी को हजार किसी को लाख ऐसे नहीं दिए।
नशा और खुशी है,
वो नशा रहना चाहिए, वो खुशी रहनी चाहिए कि इतने सारे खजानों के हम मालिक हैं। और एक विशेष खजाने के लिए बाबा ने कहा, कौन सा खजाना, जिसके लिए संसार के लोग तड़प रहे हैं, जिसके लिए संसार के लोग चाहते तो है फिर भी वंचित है, ऐसा एक खजाना तुम्हारे पास है जो और किसी के पास नहीं, और तुमको वो खजाना सहज प्राप्त है।
सबसे बड़ा से बड़ा,
वो सबसे बड़ा से बड़ा खजाना है, और वो खजाना है खुशी का खजाना। संसार में कुछ दिन पहले मुरलियों में था ना, अपार दुख है यहाँ पर। कोई बीमार पड़ता है, मंजिल से गिरता है, तो डॉक्टर भी चाहते हैं कि शरीर छोड़ते, उसको गोली देना चाहते हैं, पर माँ बाप समझते हैं। तो ये संसार क्या है, अपार दुखो दुख है इधर, इतने दुख बात मत पूछो, अनंत दुख, जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख, जहाँ देखो वहाँ काटे ही काटे, दुखों का सागर है, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, इतने दुख है संसार में। फिर भी व्यक्ति इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता, ये विडंबना है। तो बाबा ने कहा, ये एक ऐसा खजाना है जिसके लिए सारा संसार तड़प रहा है, जिसे सारा संसार भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं प्राप्त करने के लिए, फिर भी वंचित है, और तुमको वो सहज प्राप्त हो गया। वो कौन सा खजाना है, खुशी का खजाना, उसको खजाने के रूप में लेना है। तो बाबा ने फिर दिनचर्या चालू की, अमृत वेला, फिर मुरली, फिर कर्मयोग, और फिर मनोरंजन के भिन्न भिन्न साधन, फिर भोजन, और फिर रात में सोना। 11 बातें हैं टोटल। तो अमृत पहले कौन सा खजाना प्राप्त है, आप खुलते ही कौन सामने आता है, विश्व का रचयिता, सर्व खजानों का दाता, सर्व वरदानों का दाता, बीज जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। साकार मूल्यों में, तीन चार मूल्यों में वही बात थी, मैं सचित आनंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, मुझ में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है, मैं बीज हूँ। तो आंख खुलते ही पहले संकल्प में किससे मिलन होता है, बीज से मिलन, वरदाता से मिलन, सर्व खजानों के दाता से मिलन, विश्व रचता से मिलन। तो कितने भाग्यशाली हो, आंख खुलते ही पहले संकल्प से मिलन, आंख खुलते ही कौन सामने आता है, जो सामने आता है उसके लिए भक्त क्या कर रहे हैं, एक झलक पाने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं, फिर भी अप्राप्त है वो भोजन के लिए, वो भोजन की बात है, तो वो तुमको प्राप्त है। तो इस खजाने, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, इस खजाने को यूज करो। यूज करना अर्थात कार्य में लगाओ, यूज करना अर्थात स्मृति में लाओ, यूज करना अर्थात उपयोग करना, इस्तेमाल करना, दिन भर में उसको कार्य में लगाना, ये है चाबी। क्या खजाने और क्या चाबी, एक जगह बोला ना, क्या खजाने क्या चाबी, इतने सारे खजाने, परंतु वो याद रहने चाहिए, स्मृति और विस्मृति का सारा खेल है। बार 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 भूलता है, उसको बार 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 स्मृति में लाओ, अमृत वेले कौन मिला। एक और एक चीज बोली ना, ये भी याद करो, कौन कौन से खजाने मिले, किससे मिले और कितने समय के लिए मिले। क्या मिले, कितने मिले, किससे मिले, कितने समय के लिए मिले, ये वो खजाने हैं जो अनेक जन्मों तक चलने वाले। संगम युग की भी बात की, छोटा सा युग है, छोटा सा उसका ड्यूरेशन है, छोटा सा उसका ये है, परंतु सर्वश्रेष्ठ युग है। इस युग में तुमको सारे खजाने मिलते हैं, और किसी युग में इतने खजाने नहीं मिलते। तो संगम युग की भी बाबा ने महिमा की, प्रभु मिलन का गुप्त युग या पुरुषोत्तम संगम युग है, ये लीप युग है, धर्माव युग है, सब प्राप्ति करने का युग है, सब कुछ जमा करने का युग है। तो संगम युग की भी महिमा बाबा कर रहे हैं, भारत की भी बाबा महिमा कर रहे हैं, सर्व खजानों की हमको याद दिला रहे हैं। ये खजाने तुमको अभी प्राप्त है जो कि तुम जन जन्म तक चलते हैं, जन जन तक खाते रहते हो, आधा कल्प तक जन जन्म तुम खाते रहते हो, इतने खजाने तुम्हारे पास है। पर उसको खजाने के रूप में स्वीकार करना है बुद्धि में। तो सबसे पहला खजाना है अमृत वेला, किससे मिलन हो रहा है और क्या क्या प्राप्ति हो रही है। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति के अधिकारी तुम बनते हो, तुम हो बच्चे और वो है भिखारी। सर्व संबंधों के अनुभूति के अधिकारी के अनुभव के अधिकारी तुम हो, तो ये है अमृत वेले का महत्व। ऐसी खुशी और कोई है? दूसरा खजाना
पढ़ाई।
पढ़ाई क्या कहा उसमें गुरु गोविंद राजू मेरी बोलो क्या कहा?
परम धाम से आते लंदन अमेरिका से नहीं आते।
परम धाम से जहाँ तक साइंस सोच नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते, न शशांक न पावक, न तद भासे ते सूर्य शशांक न पावक तद धामम परमम मम। गीता में लिखा है अर्जुन, जहाँ न सूर्य है न चंद्रमा है, वो मेरा धाम है, परम धाम। सूर्य का प्रकाश वहां नहीं है, चंद्र नहीं है, ना सितारे है, वो स्वयं प्रकाशित धाम है, वो मेरा धाम है। वहां से मैं पढ़ाने आता हूँ, स्पेशल फ्री, नो फी, रेगुलर, डेली, पंक्चुअल, हर दिन।
और आपको प्रारब्ध मैं नहीं लेता, आपको देता।
और पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग मैं नहीं लेता हूँ, तुमको देता हूँ। तो निष्काम भाव भी यहाँ व्यक्त हो रहा है उसका। और फिर भी बच्चे मुरली नहीं सुनते, मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफु चक्कर हो जाता है। इसके लिए मुरली मिस नहीं करो, मुरली मिस करते हो तो अच्छी अच्छी जो पॉइंट्स निकलती है, जिससे पुराना संशय उड़ जाता है, मंडे की मुरली, कोई पुराना संशय हो तो वो उड़ जाएगा। इसके लिए गुह्य और गुह्यतम रास में तुमको सुनाता हूँ, कल की मुरली गुह्य भी है और गुह्यतम भी है, अच्छे से अच्छी पॉइंट, नई से नई पॉइंट, गुह्य से गुह्य पॉइंट में तुमको सुनाता हूँ। इसके लिए ध्यान से सुनो, अटेंशन से सुनो, खबरदार जरा भी अलबेलापन। जो जो मैं सुनाता हूँ उसको सुनो, नहीं सुनोगे तो ज्ञान रफु चक्कर हो
जाएगा।
सुनना माना बनना, केवल सुनना सुनाना, समझना समझाना नहीं, धारण करना बनना,
रफु चक्र माने स्पिरिट
जाना, भाग जाना। तो बाप इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाने आता है, इस पढ़ाई की क्या क्या विशेषता है राजू? पढ़ाई कैसी है? वंडरफुल पढ़ाई है, रमणीक पढ़ाई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पना। ये पढ़ाई ही कमाई है, ये यहाँ के लिए नहीं है, वहाँ के लिए है, यहाँ के लिए भी है। पर बाबा कहते हैं पढ़ाई अनकॉमन पढ़ाई है, असाधारण, अद्वितीय, अनूठी पढ़ाई है। ये पढ़ाई दवा, दवा भी है, गुप्त है, गुह्यतम गुप्त है, पढ़ाने वाला गुप्त, पढ़ने वाला गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त और युग भी गुप्त और ज्ञान भी गुप्त और योग भी गुप्त, प्राप्ति भी गुप्त, सब कुछ गुप्त, माया भी गुप्त, दुश्मन भी गुप्त, ये लड़ाई भी गुप्त, ये चढ़ाई भी गुप्त, विजय विजय भी गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर गुप्तेश्वर की महिमा है भक्ति में, इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ गुप्त है। तो बाबा परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, एक ये था ज्ञानामृत में 108 कारण मुरली न सुनने के, ज्ञानामृत में 108 कारण, एक बार आर्टिकल
आया था। सुनने
हाँ, अभी निकलने वाले थे, घर में मेहमान आ गए, अभी निकलने वाले थे पर ठंडी आ ज्यादा थी, अभी निकलने वाले थे, ऐसे 108 कारण कर एक बार आए थे। बहुत सारे अच्छे अच्छे कारण थे। तो ये था दूसरा, अभी तीसरा,
कर्मयोगी
हर कर्म में
भगवान
सदा साथ है, फ्रेंड है, दोस्त है, सखा है,
युगल है,
युगल भी है, विचित्र युगल भी है। क्या करता है युगल बनकर, अगर कोई बोझ हो तो बोझ मुझे दे दो और हल्का हो जाओ, अगर कर्म करते हुए कोई मुश्किल है तो वो मुझे अर्पण कर दो और स्वयं हल्का हो जाओ। रोना लगाए ना युगल, रोने वाले युगल नहीं बन सकते, रोना नहीं है, रोना बंद। योग की टंकी नहीं, योग की धूप से टंकी को सुखा दो, 90 की मुरली है सेकेंड, योग की धूप से आंसू नहीं बोला बाबा ने, बस बोला टंकी को सुखा दो। हमारी एक बहन बोल रही थी उधर क्लास में, हमारी टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप भी अंदर नहीं जा सकती। इतनी पावरफुल टंकी बना रखी है कि योग भी धूप भी असमर्थ है इसको सुखाने
का। लेकिन साइंस का साधन है जो धूप से ज्यादा काम करती है।
तो फ्रेंड, फ्रेंडशिप निभाते हैं हर कर्म में, चाहे लौकिक या अलौकिक, केवल अलौकिक नहीं, लौकिक कार्यों में भी साथ निभाते हैं तो अलौकिक कार्यों में भी साथ निभाते हैं। मैं सदा साथ हूँ, ये उसका वादा है, तो वो साथ निभाता है, दोनों कर्मों में साथ निभाता है, फ्रेंड बनकर साथ निभाता है, या ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर साथ निभाता है, या युगल बनकर, विचित्र युगल बनकर साथ निभाता है, कहता है सब कुछ बोझ मुझे दे दो। तो हर कर्म में साथ, ये था कर्म। अभी कर्म पूरे हुए उसके बाद क्या चाहिए आत्माओं को, मनोरंजन के साधन, टीवी चाहिए, पिकनिक चाहिए, पढ़ना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, चिटचैट चाहिए, गपशप चाहिए, गॉसिप चाहिए, डांस चाहिए, मनोरंजन चाहिए, ये सब चाहिए, ये है फिर भी चाहिए, अभी बोलो क्या करना है, उसके बाद भी चाहिए। वो ड्रामा से संतुष्ट तो नहीं होता देखना, फिर 5000 साल के 3 घंटे वाला चाहिए, क्यों नागेश भाई पर करे। सैर करना हो तो त्रिलोक की सैर करो, त्रिभुवन की सैर करो, तुम्हारे पास गिफ्ट है, कौन सी, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है तुम्हारे पास, अमृत वेले केयरफुल होकर यथार्थ रीति से स्थिति का स्विच सेट कर दो तो सारे दिन भर लिफ्ट ऑटोमेटिक चलती रहेगी। अथॉरिटी बन, कार्य में लगाओ तो अटकेगी नहीं, धोखा नहीं देगी। ये लिफ्ट की गिफ्ट तुमको बाप ने दी है, ये लिफ्ट सहज है, ये लिफ्ट शक्तिशाली पावरफुल है, ये लिफ्ट वंडरफुल है, अद्भुत है, ऐसी लिफ्ट तुमको मिली है, जिस लिफ्ट से जिस लोक में जितना समय चाहो उतना समय वहां ठहर सकते हो। क्या हुआ,
15 दिन पहले मिलेंगे।
हाँ, तो ऐसी लिफ्ट तुमको मिली है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, तो त्रिलोक की सैर कर सकते हो, त्रिलोकी की सैर कर सकते हो इस लिफ्ट से। फिर भी वो सैर ज्यादा पसंद आती है, क्यों, कौन सी सैर, दुनिया की, बराबर है ना। बाबा ने कहा मैंने तुमको एंटरटेनमेंट के सारे, मनोरंजन के सारे साधन दे दिए, फिर भी अल्पकाल के मनोरंजन की तरफ क्यों जाते हो, अल्पकाल के सुख साधन की तरफ क्यों जाते हो, मैंने तुम्हें ये सब दिया है। तो सबसे पहला सैर देखना है तो किसको देखो, स्वर्ग देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के अलौकिक कहानी के ड्रामा को देखो। देखना है तो ये देखो, ड्रामा देखना चाहते हो तो कौन सा ड्रामा देखो, 5000 साल का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री को पढ़ो, अपने अपने 84 जन्मों के हिस्ट्री मतलब सुदर्शन चक्र घुमाओ। रूरियान करना है तो रूबन रूह के रचता से रूरियान, भाषा काव्य है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच अलंकार कहा जाता है। तो रूह बन रूह के रचना से रूहरियान, बाप से रूहरियान। एक पॉइंट हम भूल गए अमृत वेला में, सोचो और स्वयं से बातें करो, ये पॉइंट भी है वहां पर। सोचो कौन मिला है, आंख खुलते ही पहला संकल्प में कौन किससे मिलन होता है, सोचो और स्वयं से बात करो,
सोचो स्वयं से बातें और
रूहरियान। उसमें एक इसमें और तीन पॉइंट है चिंतन के, एक होता है स्वयं से रूरियान, एक होता है बाबा से रूरियान, और एक है ज्ञान का मनन चिंतन। ऐसी तीन बातें रोज करनी है, स्वयं से बात करना, स्वयं से रूरियान करना, दूसरा बाप से बातें करना, वो अलग वो योग हो गया। स्वयं से बातें करना स्वचिंतन है, एक होता है बाबा से बातें करना, और तीसरा है ज्ञान का चिंतन मनन करना, वो थोड़ा अलग है। बाबा जो मुरलियों में सुनाते हैं, अलग अलग बातें उसमें आती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आती है, अनरिलेटेड बातें आती है ज्ञान से भी, ऐसी कुछ दूसरे दूसरे प्रकार की जो बातें आती है उनका भी चिंतन। हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया, उसको लगा हम बहुत विकारी हैं, इनके पास जाओ, बाबा ने बोला आ जाओ, तो कहा फुर्सत नहीं है, फिर मर गया, तो ये हिंदू धर्म में आएगा, देवी देवताओं में नहीं आएगा। ये सारे चिंतन के विषय कि ऐसी जो आत्मा है वो हिंदू धर्म में आएगी द्वापर में, सीधा सत्यु त्रेता में नहीं आएगी। एक बार राजेंद्र प्रसाद के लिए भी कहा था, उसको कहा आ जाओ, तो उसने कहा फुर्सत नहीं, बाद में आऊंगा, बाद में जब बुला तो कहा अभी मारू, एक मुरली में था ना, बाद में बुलाया तो कहा कि बीमारू। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ये चिंतन है, ये ज्ञान का चिंतन, मुरली में आने वाली जो बातें हैं ज्ञान का चिंतन। एक स्व से बातें करना, मेरा पुरुषार्थ क्या चालू है, अवगुण क्या क्या है, पुरुषार्थ की गति क्या है, स्पीड क्या है, तीव्र पुरुषार्थी बना हूँ, क्या क्या ऐसे कर्म किए कि जो कि विकर्म बन गए, कहाँ कहाँ श्रीमत का उल्लंघन किया आज, ये सारे है स्व से बात करना। एक है बाबा से बात करना, वो है सर्व संबंधों की अनुभूति, एक एक संबंध का अनुभव करना, उससे उससे वरदान लेना, टीचर रूप में उसको देखना। तो कहाँ थे हम, हाँ तो रूरियान हो गया। श्रृंगार करना हो तो हर गुण के विस्तार को स्वयं में समाना, हर गुण के विस्तार को स्वयं को सजाना या समाना स्वयं में, एक ही गुण लेके उसका विस्तार, उस पे सोचते जाना सोचते जाना सोचते जाना, वो सोचते सोचते ही वो अंदर समाने लगता है, केवल उसके ऊपर चिंतन करने से ही वो समाने लगता है। तो ये है श्रृंगार, फिर हो गया रूरियान हो गया, श्रृंगार हो गया, सैर हो गया, देखना हो गया, हिस्ट्री हो गया, पढ़ना हो गया, डांस का विस्तार नहीं किया बाबा ने, और डांस भी करो उसमें, जिस जिसमें तुम्हारी रुचि अभिरुचि हो वो यहाँ पर मौजूद हाजिर है मनोरंजन के साधन। पर ये होते हुए भी अभी प्रश्न दूसरा है, यहाँ पर हिस्ट्री की किताब मिली हुई है, परंतु संसार में बहुत सारी किताबें, मैगजीन है, नॉवेल है, अगर किसी को नॉवेल पढ़ता हुआ देखो तो क्या करो, संजय भाई फाड़ दो, साकार महावाक्य है, घूमना फिरना
घूमना फिरना,
यहाँ जाऊं वहां जाऊं ये करूं। सेवा के लिए जाना अलग बात है, परिस्थिति ऐसी आती है कि सेवा के लिए जाना है वो अलग बात है, एक है केवल मनोरंजन के लिए जाना, सेवा का बहाना बनाकर, वो बोझ है। सेवा तो जैसे एक बहुत बड़ा शस्त्र है, उसको कैसे भी उपयोग किया जा सकता है सेवा के नाम पर। सेवा के नाम पर स्वयं को प्रसिद्ध करना, ब्रह्मा कुमारी की आड़ में खुद का नाम बाला करना, सेवा के नाम पर अपने मोह की तृप्ति करना, फैमिलियरिटी की तृप्ति करना, वो भी सेवा के नाम पर। सेवा तो एक बहुत बड़ा जैसे एक शस्त्र है, जिसको कैसे भी प्रयोग किया जा सकता है। सेवा का नाम लेके जो करना है करो, ढाल बना दो अपनी। ब्राह्मण बहुत होशियार है संसार में, क्योंकि पढ़ाने वाला सबसे चतुर, तो चतुर सुजान भगवान के बच्चे, मास्टर चतुर सुजान,
भगवान का
उनको पढ़ाने के लिए भगवान को ही आना पड़ा, इनको पढ़ाने और किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसे पावरफुल लोग हैं। तो
समझ पा रहे हैं
कितने शक्तिशाली स्टूडेंट्स हैं। कंबाइन को भी अलग कर देते हो, तो इतने शक्तिशाली। तो सैर करने की भी फिर भी इच्छा है, पढ़ने की भी फिर भी इच्छा है, श्रृंगार
देखने के भी।
बाबा कहते हैं ना, बार बार आईना देखना, श्रृंगार तो नहीं करते पर बार बार आईना तो जरूर देखते
हैं।
टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारा सब बार बार देखते रहना। बाल तो ठीक है, ये तो ठीक है, वो तो ठीक है, तो श्रृंगार, रूरियान, रूरियान, रूरियान किससे करो? बाप से करो। रूहो के रचता से रूरियान, पर रूहो से रूरियान करने की आदत एक बार पड़ गई कि उसमें रस कम हो जाता है। इधर उधर का परचिंतन करने की आदत पड़ गई तो बाप से रूरियान, स्वयं से रूरियान और ज्ञान का मनन चिंतन, ये तीनों ही बातें आउट हो जाती है। इंटरेस्ट इसमें स्वतः ही कम हो जाता है, एक दूसरे से इधर उधर की बात है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये बातें इतनी दिलचस्प है, इतनी इंटरेस्टिंग है, उसमें एक बार रुचि हो गई तो आत्मा उससे मुक्त नहीं हो पाती, वो भी एक जाल है। ब्रह्मचारी बन गए, पवित्रता में आ गए, पर पवित्रता शक्ति नहीं बनती ब्रह्मचारी रहने के बाद भी, क्योंकि बुद्धि कहीं और लगी हुई, आत्मा स्वचिंतन में नहीं लगी। और क्या था, क्या क्या करते हो अभी आ जाओ? भोजन, उसमें दो बातें, एक बनाना, एक खाना। बनाने के लिए क्या भोग लगाते हो, स्वीकार कराते हो, किसके लिए बनाते हो, ये सोचो। ये भोग भोजन बनाते समय एक है, वो प्रेसिडेंट, अगर तुम्हारे उदाहरण दिया बाबा ने, अगर कोई प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, तो कितनी खुशी होती है। और ये इस बाप के सामने तो ये क्या है, और हमारे सामने भी ये क्या है। खुशी के लिए और एक बात कही थी उदाहरण, एक वो आपका पोज, बाबा ने कहा ना आपका पोज तो याद है ना, कृष्ण का
दर्शन देख के उनके,
नहीं, वो खुशी की शुरुआत में था ना, खुशी का पोज तुमको याद है ना आपका। फिर तो खिलाना, ये था खाना, खिलाना
है, मैं आपके साथ खाऊं।
अभी खाने के लिए क्या कहा, खाने के लिए क्या क्या,
मेरा वायदा है
साथ में खाना। बाप का वायदा क्या है, साथ रहने का। तो ये स्लोगन सदा याद रखो, वो भक्त अभी है, वो घंटिया बजाते हैं, बुलाते बुलाते भूल जाते हैं, थक जाते हैं, और बाप तुम्हारे साथ खाते है। बाप का वायदा है सदा साथ रहूंगा, ठीक है ना, बाप को याद दिलाना पड़ता है,
साथ साथ खाऊंगा, साथ साथ बैठूंगा।
तुम्ही से बोलू, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से साथ निभाऊ, तो यहाँ अगर समीपता है तो उधर बगीचे में सैर भी साथ साथ करोगे, पढ़ाई में भी साथ साथ, घूमने फिरने भूल झूले में भी साथ साथ, राज भी साथ साथ करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे भी साथ साथ, यहाँ जो रेगुलर और पंक्चुअल है वो भी वहाँ साथ साथ पढ़ाई करेंगे, जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे वो भी झूले में झूलेंगे, जो यहाँ खुशी में नाचेंगे वो वहाँ राग से करेंगे, जो यहाँ समीप सर्व संबंधों की अनुभूति बाप से करेंगे वो रॉयल फैमिली में भी साथ होंगे। तो यहाँ की समीपता, वहाँ की संबंध, वहाँ पे भी समीपता, परम धाम में भी समीपता, तो यहाँ समीप, वहाँ भी समीप, और वहाँ भी समीप, और द्वापर में भी समीप, 84 जन्मों में भी समीप। तो खाना खाना और बनाना और खिलाना, नहीं हाँ खिलाना भी ठीक है, एक है बनाना, एक है खाना और एक है खिलाना। जिनको खिलाओगे इनका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा।
तो बाबा ने कहा
दुख भंजन है ये भोजन, बाबा ने कहा है ये जो भोजन है ब्रह्मा भोजन, दुख भंजन, दुख दूर करने वाला ये भोजन। तो ये दूसरा, फिर उसके बाद में फिर क्या आ गया, अभी रात, अभी आगे चलो, अभी आगे चलो। तो आगे चलकर क्या हुआ,
सोना,
सोना। तो क्या करना सोते समय, समाचार बाप को देना, चाहे कंबाइंड रूप में चाहे बाप के रूप में। तो समाचार देना, एक तो समाचार देना और दूसरे दिन के लिए संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा के लिए प्रेरणा लेना, और हल्के होकर सोना, सुना कर सोना, जैसे हल्का ड्रेस, यहाँ बुद्धि हल्की करके सोना। और दूसरा क्या हो जाएगा, अकेले नहीं सोना, नहीं तो माया चांस लेगी उसको, अवसर मौका मिल जाएगा उसको, वो भी ताक पर बैठी हुई है। तो अकेले नहीं सोना, तो भी तो निर्भय रहेंगे और माया तुमसे डरेगी, माया भी तुमसे डरेगी। तो ये अमृत वेला, फिर पढ़ाई, फिर कर्मयोग, और फिर मनोरंजन के साधन, और फिर भोजन, और फिर रात को सोना, इतने खजाने श्रेष्ठ तुमको प्राप्त है। उसके बाद में अगर कोई आत्मा उदास रहे तो क्या कहेंगे, इतने खजाने तुमको प्राप्त है, फिर भी आकर्षण अल्पकाल के खजानों की तरफ पर है, तो क्या करो फिर। तो बाबा ने कहा स्मृति को रिफ्रेश करो, बार बार स्मृति को रिफ्रेश, जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, मोबाइल को भी रिफ्रेश करते हैं, बार बार रिफ्रेश करते हैं ना, तो सेट होता है अच्छे से और ज्यादा चलता है अच्छे से। तो वैसे इसको भी रिफ्रेश करो, बार बार रिफ्रेश करो, बार बार। आज मैं एक दुकान में गया था, वहां पे एक लड़का आया छोटा, बोले छोटा रिचार्ज कर दो 30 रुपए का, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये छोटा रिचार्ज, छोटा रिचार्ज, बाद में बीच बीच में क्या करना, एक बड़ा रिचार्ज सुबह और दिन भर में छोटा छोटा रिचार्ज। वो कह रहा छोटा रिचार्ज कर दो, बोला कितना का, बोले 30 रुपए का कर दो। तो बैटरी को भरपूर करना है ना, खाना भी मुरली आत्मा रूपी बैटरी से रिचार्ज कर दो, इसको भरपूर कर दो, मालामाल कर दो। तो सुबह एक बार और दिन भर भी बीच बीच में छोटे छोटे रिचार्ज, 5-5 रुपए 10-10 रुपए के भी रिचार्ज आते हैं। तो यहाँ पर भी
बहुत अच्छे रिचार्ज,
यहाँ पे बाबा ने कहा है बहुत व्यस्त होते हुए भी ये ट्रायल करो, एक अव्यक्त वाणी है कि जिसमें ऐसा ट्रायल करो कि बुद्धि वहां से हटाकर ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसमें बुद्धि की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत बिजी है, उसमें भी ये ट्रायल करो कि एक सेकंड में आश्चर्य हो जाओ।
अच्छा,
वो दूसरा है, कैसे भी तमोगुनी वायुमंडल हो, कैसी भी हलचल वाली परिस्थिति हो, माया अपना बनाने की कोशिश करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर दो, ये है विघ्न विनाशक। वो भी वैसी कंट्रोलिंग पावर चाहिए, वो भी एक सेकंड में एकाग्र हो जाए, ये भी तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक सेकंड में आश्चर्य, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एक सेकंड में फुल स्टॉप, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो गलती पहले की है वापस वो गलती नहीं, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एक सेकंड पहले जो स्थिति थी वो एक सेकंड हमको उस स्थिति से आगे देखे, ये है तीव्र पुरुषार्थ, सेकंड में फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करो, जरूरी नहीं है वो 10:30 और 12 ही हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल हमारा अपना ट्रैफिक कंट्रोल, वो तो करो तो ठीक है, अगर वहाँ बिजी है तो थोड़े 10 मिनट आगे भी कहा तो कोई तुमको कुछ करने वाला तो है नहीं, क्यों नहीं किया 10:30? अपना अपना सेट करो, कर सकते हैं अपना ट्रैफिक कंट्रोल स्वयं सेट करो। नहीं तो फिर ऐसा ना हो जाए जैसे शांतिवन में जो नए लोग आते हैं रास्ते में चलते चलते रुक जाते हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, एक भाई को तो हमने ऐसे देखा भोजन कर रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, यही रुक गया। अभी बस और ये करते समय इधर उधर ध्यान, कौन क्या क्या कर रहा है, बाकी लोग मुझे देख तो नहीं रहे हैं। वहाँ तो बहुत ज्यादा रिलीजियस भी करते एकदम पूर्ण, जैसे जो नए लोग आते हैं या पार्टी आती है ना नीचे, तो वहाँ बहुत ज्यादा महत्व होता है, घर में कुछ नहीं, पर यहाँ आता है तो एकदम नशा हो जाता है ना, बाबा आ रहे अभी 2 दिन में या 1 दिन के बाद, तो एकदम जहाँ बिल्कुल खड़े हो जाएंगे रास्ते के बीच में, गाड़ियां आ रही है, हॉर्न चालू है, खड़े और उनको भी कहेंगे याद दिलाएंगे ट्रैफिक। फ्लेक्सिबल तो इतने खजाने तुमको दिए उसके बाद में थी उदास, इतने खजाने दिए फिर भी बुद्धि भटकती है, तो बाबा ने क्या कहा कि ये रिफ्रेश करो स्मृति, बार बार स्मृति में लाओ, ये चाबी भी है, क्या चाबी क्या खजाने, चाबी है यूज करना, चाबी है खुशी के खजाने को यूज करना, प्रयोग में लाना, इस्तेमाल करना, कार्य में लगाना, स्मृति में लाना, उसको चाबी कहाँ रखी है, सामने रखो चाबी बाबा ने कहा, सामने अर्थात स्मृति में, नहीं तो चाबी तो है खजाने भी और चाबी रख दिया कहीं और ढूंढ रहे,
बाप और चाबी,
बाप और चाबी, बाप और खजाने दोनों सामने हो, जो नशे वाली आत्मा है उनके बाप और खजाने दोनों सामने, ये जो भी बातें सुनी हजारों बार सुन चुके हैं, कर्म में बाबा साथ है, नया तो कुछ नहीं है, अमृत वेले तुमको ये मिला वो भी सुना है, खाते समय क्या करो बनाते समय क्या करो वो भी सुना है, सैर करो तीनों लोग की वो भी सुना हुआ, कुछ नया था,
एक बार बाबा ने भी कहा ना खाते समय अगर आप बाप को याद नहीं कर खाते हो तो
माया करती क्या करती है, खा जाती है और शक्तिशाली बन जाती है, और वो खाना भी केवल एक बार याद कर लिया और खलास आगे नहीं, वो भी नहीं है, फिर पार्टियों से मुलाकात, क्या कहा
फरिश्ता स्वरूप,
तो पापा ने कहा तुम्हारा कल तो पहले भी हम ही फरिश्ता थे, हम ही फरिश्ता है, फरिश्ता से चालू किया और उसमें कितनी सारी बातें डाल दी बाबा ने, सारा ज्ञान ही डाल दिया उसमें फरिश्ते के, वो एक पार्टियों से मुलाकात में सब कुछ डाल दिया उसमें, फरिश्ता अर्थात जिसका संबंध एक केवल एक से रिश्ता, बाकी सारे संबंध निमित्त मात्र, 2 दिन पहले मुरली में था ना, केवल भाई भाई की दृष्टि और बाकी सारे संबंध कैंसिल, बाकी सब संबंध कैंसिल, केवल एक भाई भाई की दृष्टि, फिर ये था फरिश्ता अर्थात सर्व रिश्ते एक से और बाकी सारे संबंध निमित्त मात्र, ऐसी जो आत्मा होंगी वो सदा नाचती रहेगी, सदा खुशी में रहेंगी, उसके लिए भी क्या कहा आगे, इसमें इतनी सारी बाबा ने बातें डाल दी है, हाँ ये कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए, विघ्न आएंगे, विघ्न विनाशक भी डाल दिया उधर, तुम रिपीट कर रहे हो क्या हुआ कैसे हुआ, कोई आश्चर्य नहीं, ये सारी कंप्लेंट कंप्लीट वो भी उसमें डाल दी, उसमें लक्ष्य और लक्षण की भी बात डाल दी, उसमें फिर रोने की भी बात डाल दी, कभी रोते तो नहीं हो,
लक्ष्य है तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस माना लक्षण,
अंतर नहीं होना चाहिए, धारणा में भी अंतर नहीं होना चाहिए,
वहाँ पे ऐसे क्यों हुआ ऐसे क्यों किया मेरे बेटे की, वो भी रोना है,
हाँ वो भी एक रोना ही है, तो बाबा कहा बाप के साथ कौन चल सकेंगे जो
समान होंगे,
समान होंगे जो रोने वाले वो बाप का युगल नहीं बन सकते, तो ये ऐसा करता है इसके लिए आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा हुआ वैसा हुआ मदद करो कृपा करो ये सब मन का रोना है, इस रोने से भी रोना प्रूफ रोना मुक्त, बाबा को रोना पसंद नहीं है।
फिर फरिश्ता का दूसरे वरदान ने भी बोला ना परमात्मा संदेश वाहक है,
वो दो हफ्ते एक हफ्ता पहले याद है फरिश्ता अर्थात परमात्मा संदेश वाहक, परमात्मा अर्थात सबका हितकारी, परमात्मा परमात्मा नहीं फरिश्ता सॉरी, फरिश्ता अर्थात जो सबका, एक दो का नहीं, फरिश्ता अर्थात बात समान, फरिश्ता अर्थात दूसरों को भी देह और देह भान से परे, फरिश्ता अर्थात सर्व संबंध बाप से जुड़ाने वाला सब आत्माओं के, क्योंकि सात आठ बातें, पांच सात आठ बातें थी उसमें फरिश्ता की, तो कई परिभाषा बाबा ने दी है। यहाँ बोला सर्व रिश्ता एक के साथ, इस लास्ट संडे में भी मुरली था ना, सारे संबंध, मोह का बीज क्या है
संबंध,
तो संबंध को कट कर दो तो मोह स्वतः ही नष्ट हो जाए, ज्यादा संबंध बनाने की जरूरत नहीं है संगम युग, जितने नए नए संबंध बनाओगे, क्योंकि कलयुग के जो भी संबंध है वो सब दुख देने वाले, वो सभी बंधन है, वो सभी बंधन है, चाहे कितना भी कोई अच्छा संबंध हो, किसी को बहन बनाओ, किसी को माँ बनाओ, किसी को कुछ बनाओ, किसी को भाई बनाओ, ब्राह्मण परिवार के अंदर कुछ जोड़ते हो, कुछ तोड़ते हो, कुछ बंधन जो है वो तुम क्या करते हो, वो काटते हो, कुछ मिटाते हो,
कुछ मिटाते हो
बंधन, और संबंध जोड़ते हो तोड़ते हो, बाबा ने कहा वो भी कब तक,
लगन भी है विघन,
हाँ लगन और विघन दोनों साथ साथ चलते हैं क्या, बाबा ने प्रश्न पूछा, लगन भी है और विघन भी है, तो विघ्न विनाशक,
विघ्न आएंगे लेकिन आप रुकते नहीं हो,
विघ्न आएंगे पर उसको विघ्न नहीं समझना है आपको,
रुकते नहीं,
तो और ये उसमें और एक पॉइंट रह गया ना, बाप समान कर्म, अगर चेक करो, अगर बाप समान कर्म नहीं है तो कट करो, कट कर दो, बाप समान है तो ठीक, बाप समान नहीं है तो कट करो, हाँ जो भी साधारण कर्म है उसको विशेष श्रेष्ठ बना दो, चेक करो और साधारण कर्म को श्रेष्ठ बना दो, फिर उसके बाद में सेकंड पार्टी, सेकंड पार्टी में क्या कहा,
यही लगन और विघ्न विनाश,
नहीं नहीं सेकंड पार्टी कर्म के ऊपर है पूरा, चार पांच पाते हैं, बाप का कर्तव्य क्या है विश्व कल्याण, तो बाप के सहयोगी हो इसके लिए कोई भी अकल्याण का कर्तव्य नहीं करना है, सुबह हम बोल रहे थे ना अकल्याण के कर्तव्यों की लिस्ट, ऐसे कौन से कर्तव्य है जो अकल्याण के कर्तव्य है, विकार नहीं दूसरे
बाधा है,
हाँ मतलब जो यज्ञ में जो बाधा बन जाते हैं ऐसे अकल्याण के कर्तव्य होते हैं कुछ,
के में भी बाधा बन सकते हैं
वो तो बनेंगे यहाँ, हाँ सौ के पुरुषार्थ में, पर कौन कौन से कर्तव्य है, कंप्लेंट करना, गॉसिप कह सकते हैं, अकल्याण के कर्तव्य में और क्या आता है,
अवगुण का फैलाना,
अवगुण का वातावरण को दूषित करना, थोड़े बड़े टाइप के विघ्न,
दूसरे का अवगुण भी दूसरों से वर्णन करना, वो व्यक्ति ऐसा है
मतलब परिचिंतन में सब आ गया,
बड़े अपनी इच्छाओं को बढ़ा देना,
अपनी इच्छाओं को बढ़ा देना,
इच्छाओं को
पूर्ण करने के लिए विवश कर देना सामने की आत्माओं को बड़ों को, ये है अकल्याण के कर्तव्य, ऐसे करते हो जिसके बाप बाप की निंदा हो जाए, बाबा ने कभी गंधर्व विवाह के लिए भी कहा, गंधर्व विवाह सबसे पहले नंबर पर है कुमार और कुमारी, सेकंड नंबर पर फिर गंधर्व विवाह, उस थर्ड नंबर पर, दूसरे नंबर पर गृहस्थी, जो एक बार तो विकार में चले गए पर बाद में जब स्मृति आई ज्ञान मिल गया उसके बाद में फुल स्टॉप, उसके बाद में आगे बढ़ रहे, और तीसरा नंबर पर बाबा ने उन लोगों को डाला था जो गंधर्व विवाह, अब उनके लिए बाबा ने कहा था क्या क्या कर दिया उन्होंने, एक तो बाप की निंदा कर दी, की कमाई छट कर दी, बाप की निंदा की, चाहे कुछ भी किया हो पर वो बाप की निंदा किए हो, क्योंकि बाप का आदेश क्या है उन्होंने किया क्या, तो वो जो है ना वो एक अकल्याण के कर्तव्य में जाता है, दोनों पार्टियों से
तो
वो बाबा कहे वो बहुत रेयरली, वो बाबा के आदेश से वो अलग, ये स्वयं की इच्छा से, वो बहुत सारी बात है, पर बाबा ने ये कहा हुआ है इसके लिए, ये भी अकर्तव्य है, अकल्याण का कर्तव्य है, ट्रेटर बन जाना, वो क्या लगता है आपको, इसको कुछ ऐसे बचा नहीं सकते, अरे अपना ये तो ब्राह्मण को बहलाने की बात है,
बचाने की बात ही नहीं,
पवित्र प्यार है वो, ऐसे वो
पवित्र प्रेम
होता ही नहीं, होगा ही नहीं,
हो नहीं सकता। आत्मा में इतनी वासनाएं हैं वो कहाँ पवित्र रह सकता है। क्या शरीर बूढ़ा होता है? वासनाएं थोड़ी बूढ़ी होती है, वासनाएं तो जवान होती रहती है, वो तो अवसर की ताक में बैठी है।
और शिव बाबा मिला तो ये क्या बात है,
बाकी सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा।
फिर आकर्षण क्यों?
बाबा ने कहा हुआ है साकार महावाक्य, बच्चे बाप से कहते बाबा, माता पिता नाराज होते शादी करने के लिए, कहते बाप कहते भले भले करो, इच्छा है मतलब करो, उसके आगे एक वाक्य है, उसी के आगे इच्छा है, उसी के आगे डैश 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 एक वाक्य है, बाप की याद में अगर गला भी कट जाए तो ऊंच पद पाओगे। यहाँ तक बोला है, अभी बोलो और क्या बोलना है, कोई तर्क? बाबा ने कहा है अगर बाप की याद में गला भी कट जाए, मर भी जाओ तो भी ऊंच पद पाओगे।
गला तो काट लेने शादी करके।
मंडली में एक बहन ऐसे जल गई, मर गई पूरी, खाना नहीं खाया
पूरी, मर गई
गल में, तो बहुत
ऊंच पद बलिदान है,
ये है वीरगति को प्राप्त,
वीरगति को प्राप्त होना सच्चा सच्चा युद्ध के मैदान में हुतात्मा।
जैसे भक्ति मार्ग में सिखाते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो कहते स्वर्ग में जाएंगे, ये भी युद्ध का मैदान।
अर्जुन को वही तो कहा है गीता में, अगर तुम जीत गए तो राज्य भाग पाओगे और मर गए तो सीधा स्वर्ग, स्वर्ग बाबा ने अभी मुरली में भी कहा था ये पॉइंट,
बाबा ने अभी मुरली में कहा
तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे, तो दोनों तरफ से फायदा है, इसके लिए युद्ध करो, बैठो मत,
फायदा
यहाँ भी लगे रहना है, तो कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। तो एक तो ट्रेटर बनना, एक गंधर्व विवाह, किसी की निंदा ग्लानी, बहुत सारी इच्छाएं रखना, बड़ों को विवश कर देना, ऐसे होते हैं ना आजकल तो बहुत चल रहा है, ऐसे करो नहीं तो हम आत्महत्या,
बदला लेते हैं,
मीडिया में चले जाएंगे,
मीडिया में चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये धमकी देना, ये सब अकल्याण के कर्तव्य
है। कुछ आपका सुनेंगे नहीं तो दुश्मनी बनती है।
आपने अगर कुछ सहायता नहीं की, मदद नहीं की तो बदला, और ब्राह्मण बहुत जबरदस्त तरीके से बदला लेते, वो आतंकवादी तो बस मार देते बहुत आसान है, यहाँ तो तिल तिल मारते हैं, तड़पा तड़पा कर। तो अकल्याण के कर्तव्य नहीं करने, बाबा ने कहा कौन हो तुम, विश्व कल्याण कर, ये पहला पॉइंट है, उसमें पांच पौते है, सबसे पहली बात तो ये, दूसरा वृत्ति नहीं धारणा, धारणा कैसी होनी चाहिए, जो विश्व कल्याणकारी आत्मा है उनकी रहम दिल और रहमदिल और महादानी, श्रेष्ठ महादानी, रहमदिल और, क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसी धारणाएं होती है, तो कर्म है विश्व कल्याण, तो धारणा स्वतः ही रहमदिल की होगी और स्वतः ही कल्याण की होगी, फिर जैसा कर्तव्य वैसी वृत्ति होती है, तो बाबा ने कहा हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलो और चलाओ, ये एक पॉइंट थी। और एक बात थी कर्म के बारे में, वो बोलो कौन सी है चिमन भाई, और एक पॉइंट थी आशीष भाई, कौन सी वो पॉइंट है कि जिससे आशीष मिल जाएगी? सेवा, बाबा ने कहा मैं पन निमित्त मात्र सेवा करना, मैं पन समाप्त, ऐसी सेवा करोगे तो अनेकों की आशीर्वाद दुआए आशीष मिलेगी,
तो खुद आशीष
देते रहते हैं, दुआएं मिलती रहती
है। तो ये विश्व कल्याणकारी, ये एक ऐसा समान है, मैं विश्व कल्याण, इसमें बहुत इसके विस्तार में हम जा सकते हैं, विश्व कल्याणकारी है तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, विश्व कल्याणकारी है तो किसी के प्रति घृणा नहीं करनी,
निमित्त का भी एडवांटेज ले रहे हैं।
वो निमित्त आपने कहा था ना, निमित्त कहने के लिए निमित्त मात्र कहते हैं कि मैं निमित्त हूँ, निमित्त मात्र ही कहते हैं कि मैं निमित्त, कहना तो इतना आसान लैंग्वेज हो गई है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए, और आखिर में एक वाक्य, ये सब मैं निमित्त मात्र कर रहा हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, ये ब्राह्मणों की भाषा है, सब इधर मैं और फिर लास्ट में बाबा ने निमित्त, ब्रह्मा कुमारी की आड़ में स्वयं को प्रत्यक्ष करना, ये भी बोझ है, ये अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी माया है कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति जो है ना ये अध्यात्म मार्ग की माया है। जैसे 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 आगे बढ़ती जाती है आत्मा और उसमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं और बहुत सारी विशेषताएं उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें एक सूक्ष्म जब बहुत कीर्ति हो जाती है तो वो बार बार सुनने की इच्छा होती है, हृदय गदगद हो जाता है, सुख मिलता है, बहुत अच्छा प्रशंसा होती है तो बहुत सुख मिलता है, और वही आत्मा को फंसाता है क्योंकि वहां के बाद फिर आत्मा की प्रगति रुक जाती है।
क्योंकि
यहाँ बाबा ने कहा मैंपन समाप्त, बाप का कार्य है, वो स्वतः ही होगा, सहज होगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप को निमित्त। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ती आत्मा तो अभिमान आने लगता है सूक्ष्म कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने किया इसके लिए हुआ, मैं अगर नहीं होता तो ये कार्य ही नहीं होता, मुझ में ये विशेषता है इसके लिए ये सब हो रहा है,
और मैं इतने साल से करते आ रहा
हूं। हाँ इतने साल से, और ये नए लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। कल जो हम सुबह बताया ना श्रेष्ठ पुरुषार्थियों में भी ये आ जाता है, जो पुरुषार्थ के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, सारी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, तो जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे उनके प्रति सूक्ष्म घृणा उत्पन्न हो जाती है, घृणा कि देखो ये कुछ करते ही नहीं है, हम इतना चिंतन करते हैं मुरली का, ये तो बस ऐसे ही लगे हुए बातों में, कह नहीं रहे उनको पर अंदर ही अंदर सोच संकल्प आ रहा है, वो देखते ही संकल्प आता है ये वो आत्मा है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ सबको महान आत्मा समझो, वो संकल्प लुप्त हो जाता है और ये आता है हम ये कर रहे हैं, हम अमृत वेला कर रहे हैं ये तो सो रहे हैं, हम मुरली सुन रहे हैं ये यहाँ घूम रहे हैं, हम ज्ञान का मनन कर रहे हैं ये ऐसा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं निरंकारी बनने का अंदर, ये सोच रहा है कि मैंने किया और हम ये देख रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ एक तरफ जा रहा है परंतु पुरुषार्थ के मार्ग में जब ये देखते हैं कि ये ऐसा सब कर रहे हैं तो इनके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो क्या ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ में बाधा है? ये भी जैसे वो मार्ग पे कीर्ति बाधा है वैसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ के मार्ग में भी एक बाधा है।
तो यहाँ पे क्या पुरुषार्थ पे जो मन में बात
है? यही सोचो बार बार कि किसी को देखना नहीं है, एक हरेक का अपना अपना पार्ट है, हरेक का अपना अपना पुरुषार्थ है, और उसने क्या पुरुषार्थ किया मुझे क्या पता, कोई 40 साल से चल रहा है उसका जमा है बहुत सारा, हम अभी अभी आए हमको क्या पता उसने क्या किया है, वो तो लास्ट में एक सेकंड में आश्चर्य बन जाएगा, अभी जैसे दिख रहा है कुछ भी नहीं है उसकी स्थिति, वो एक सेकंड में अपनी स्थिति बना लेंगे और हम रोते बैठेंगे।
24 घंटे में साथ में रहते तो हमारे सामने दिखा देना, पीछे पुरुषार्थ करता होगा,
करता होगा पुरुषार्थ, गुप्त पुरुषार्थ होगा हृदय के अंदर, हमको क्या पता, हम तो सोच रहे हैं सो रहा है, किसका पुरुषार्थ, गुप्त चीज है योग, दिखता थोड़ी ना है योग, इतना सूक्ष्म है इतना गुप्त है कि उसका कुछ दृश्यमान नहीं है योग।
और एक बात यह है कि वो जैसा हमको अच्छा नहीं लग रहा है,
और हमारी पूर्व पूर्व क्या कहते हैं उसको बायस, पूर्व पूर्व ग्रह है, मतलब हम पूर्व ग्रह है उसके बारे में, हमने पहले से बहुत सारी चीजें सोच के रखी, 2-3 बातें गलत देखी ना, तो अभी अच्छा भी करता है तो उसमें हमको गलत ही दिखाई देता है, उसने बातें ऐसी कुछ कुछ की है अब तक,
2-3 लोगों ने सुनाया
भी है और हाँ वो कंफर्म भी किया है, प्रूफ है उसका हमारे पास, एविडेंस प्रूफ, एविडेंस है पूरा, प्रमाण है ये ऐसा ही करता है, इसको अपनी महिमा ही सुनानी अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, जब भी आता है 3-4 लोग साथ में रहते हैं उसकी महिमा करने वाले, उनसे देखना उसको मिलना हमको पसंद नहीं आता, ये भी सूक्ष्म घृणा है। तो जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ के मार्ग पर निकलता है उसके मन में जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे उनके प्रति सूक्ष्म घृणा उत्पन्न होती है, उससे भी उसे मुक्त होना है, ये भी एक सूक्ष्म पुरुषार्थ है। जितना पुरुषार्थ सूक्ष्म होते जाता है उतनी माया भी सूक्ष्म रूप धारण करती है, बहुरूप, उस दिन वरदान था ना मास्टर मायापति बनना है तुमको, परखना है तुमको बहुरूपी माया को भी परखना है, माया को परखने वाले ही मास्टर मायापति, इतने सूक्ष्म रूप है उसके कि हर दिन नया रूप धारण करके आती है, लिख के नहीं आती है कि माया हूँ, रावण थोड़ी लिख के आता है मैं शत्रु हूँ तुमको उठाने लेके आया हूँ, नहीं वो तो साधु का वेश धारण करके आता है,
और अट्रैक्टिव बन के आता
है, हाँ वो समझ में ही नहीं आता है क्या है, हम हर दिन नया पेपर क्या क्या रॉन्ग नंबर पर माया को बाप के बच्चे बहुत प्रिय है, अति प्रिय लगते हैं, और सबसे ज्यादा उसको प्रिय कुमार है, सबसे ज्यादा दृष्टि उसकी कुमारों की तरफ रहती है क्योंकि उसने उसको बहुत अपमानित किया है कुमारों ने, नहीं उसको उसकी विश्व विजयी सेना को परास्त किया है ये कुमारों ने, इतनी बलशाली शक्तिशाली वो, और ये कुमार आज के आए अभी अभी निकले और मुझे मार रहे। जिस काम को कोई जीत नहीं सका, जिस ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिसके अधीन है काम, ऐसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, जो कामदेव है उसके जो तीर होते हैं ना उसको कोई रोक नहीं सकता, उन तीरों को अचूक अमोघ तीर है वो, मार दिया तो बस मार दिया। काम कामदेव के पास तीर दिखाते हैं, कामदेव का चित्र देखा ना उसकी तुनी, हाँ उसके पास तीर होता है, पांच तीर होते हैं उसके, पांच तीर होते हैं, कौन कौन से, कामदेव के पास पांच तीर होते हैं। सबसे पहला तीर मोह, ऐसा तीर मारता है कि उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति में, मोह का तीर, कि व्यक्ति मोहित हो जाता है किसी पर, उसके रूप रंग सौंदर्य के ऊपर वही अच्छा लगने लगता है, सारा संसार व्यर्थ लगने लगता है, सबसे सुंदर वही व्यक्ति दिखता है, उसका शरीर उसका रूप उसका सौंदर्य लावण्य, वो सबसे पहला तीर है मोह का। दूसरा तीर होता है स्तंभन, स्तंभन मतलब जिसमें व्यक्ति जैसे कि बेहोश टाइप हो जाता है, बदहवास, अर्ध चेतन, अर्ध अर्ध बेहोश, इतना बेहोश हो जाता है, स्तंभन स्टुपिफाइड स्टेट ऑफ, स्तब्ध हो जाता है, मतलब उसकी बुद्धि काम करना वहां शिथिल हो जाता है, स्तब्धता आ जाती है, वो होता है स्तंभन। स्तंभन संस्कृत शब्द है। दूसरा तीर उसके पास वो है, एक बार चला दिया काम ने, कामदेव ने, कि बस। कामदेव के प्रकट करने के बहुत सारे साधन है, सिनेमा, टीवी, मैगजीन, ये सारे जो है, ये इसके पास जाओ तो तुरंत कामदेव प्रकट होता है अपने तीर लेकर। पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर उन्माद, नशा, उन्माद मतलब नशा, ऐसा नशा चढ़ता है कि बस, सेमी नशा, नशा सेमी नशा, उन्माद, कामांधता, उसमें काम का उन्माद जो है वो इतना जबरदस्त है, इतना तीव्र है कि उसके सामने बाकी ये खाने पीने के सुख तो कुछ नहीं है, वो ही चाहिए बस। जब तक वो तीव्र इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक आत्मा तड़पती है, वो है उन्माद, नशा, वो उसके पास तीर है। चला दिया काम ने कि बस घायल, फिर तो ज्ञान योग तो पूरा, ये श्रीमद ज्ञान योग कुछ भी दिखता नहीं है।
अभी तो दो तीर बाकी है, अभी तीन ही हुए।
ये तीसरा तीर है उसका। चौथा तीर होता है शोषण, शोषण में व्यक्ति कमजोर हो जाता है, इफिमिनेट नपुसक हो जाता है, उसकी शक्ति जो है आध्यात्मिक चेतना शक्ति स्मृति स्फूर्ति सब कुछ कमजोर हो जाता है, शरीर मन की बात है, कमजोर नामर्द जिसको कहते हैं, कमजोर मन से, पौरुष जो होता है ना पुरुषों में वो कमजोर हो जाता है उसका। और उसका आखिरी तीर कौन सा है, समर्पण नहीं है उसका, हाँ आखिरी तीर होता है तपन, तपन 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 मतलब शरीर और मन में आग उत्पन्न करता है, आग 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 की अनुभूति होती है, ऐसी आग, ऐसी आग कि जब तक वो प्राप्त ना हो जाए तब तक वो आग शांत होने वाली नहीं है, किसी से भी शांत नहीं होती है वो, एक एक्सट्रीम स्टेज है वो, बस वो ही चाहिए ये काम, तपन तपन अग्नि, अग्नि वो ऐसी अग्नि है उसको नहीं शांत किया, वो भोगने के बाद ही शांत होती है। तो ये ऐसे पांच महाभयंकर तीर है उसके पास जिसको कोई शांत नहीं कर सकता, कामदेव के पास। हाँ वो भी बहुत अच्छा सीन है, वो सीरियल में दिखा था ना, कामदेव शंकर ऐसे बैठे हुए हैं, कामदेव वहां से तीर चलाता है ऐसे एक, तो वो आग खोलता है, वो आग से ऐसी अग्नि, ये ना योग का प्रयोग के लिए बहुत अच्छा है, कामदेव सामने अपने तीर लेकर और हमारा नेत्र खुला और ऐसी आग निकली और वो जल कर बस
वही
ढेर, ये इसको इमेजिन करना,
फिर उसने रक्षा किया ना, किसी के
मार दिया खत्म। फिर रति ने उसको प्रार्थना की, फिर कहा कि मैं जब कृष्ण जन्म लूंगा तब प्रद्युम्न नाम से ये जन्म देगा, फिर तब उससे तुम उससे शादी करना। ये ऐसी भक्ति मार्ग की कहानी है, शास्त्र पढ़ना भक्ति करना ये सब कहानी। रावण भी भटका है और तुमको भी भटका है खाना बदोश मेगा बॉन्ड यहाँ वहाँ भटकते रहता है। और क्या बोला, कहाँ थे हम? हाँ तो कर्म, नहीं नहीं यही चालू था, निमित्त मात्र। एक तो वृत्ति कल्याणकारी, कोई भी अकल्याण का कर्तव्य ना हो, वृत्ति में भी कल्याणकारी, और धारणा होगी स्वतः ही धारणा होगी उनको। तो ये था पार्टियों से मुलाकात दो। वरदान कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, सब कर्म बंधन समाप्त। अगर अपनापन है किसी में तो उसमें भी क्रोध और अभिमान उत्पन्न हो सकता है। अपनेपन का अधिकार है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये जो है ना, इसमें अगर बाधा उत्पन्न हुई तो क्रोध आएगा या अभिमान आएगा। फिर दोनों चीजें होती है किसी व्यक्ति के लिए। हाँ अधिकार खत्म कर दो। स्लोगन बेहद की दृष्टि हो। तो ये थी आज की मुरली। एक हफ्ते में बाबा कहने से अल्लाह मियाँ बाबा बैठे एक रस सबको धारण नहीं, किसी को 1% किसी को 95% धारण होता है। सब एक जैसा धारण नहीं कर सकते, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है।
क्रिमिनल आँखों से पवित्र चीज
दिखाई नहीं देती, साक्षात्कार की बातें थी ना।
मैंने अपने पास रखा है क्या, अगर सब कुछ तुमको दे दिया,
सब कुछ दे दिया।
ब्रह्मा को नहीं मानता हूँ,
अगर ब्रह्मा नहीं तो मैं नहीं अगर ब्रह्मा नहीं तो मंत्र किसके द्वारा दूंगा, अगर ब्रह्मा नहीं तो तुम किसके पास बैठोगे, अगर ब्रह्मा नहीं तो किसके द्वारा सुनोगे,
ब्रह्मा नहीं तो तुम पैदा ही कैसे होगे।
उदास होते हो तो प्राप्ति की लिस्ट याद करो, की पूजा और मेरी पूजा और मेरे देवी देवताओं को कितना मेहनत से मूर्तियां बनाते हैं, और मेरा तो गोल गोल चिकना, मेरी मूर्ति तो बनाते ही नहीं है, ऊपर से पहाड़ों से और झरनों से गिरकर आता है चिकना गोल पत्थर बस। मेरे तो तुम्हारा बनाते है इतना मेहनत से, कान बनाते ये करते वो करते, मेरा कुछ नहीं।
मेहनत से बनाते ये भी मेहनत से ही बनते हैं ना,
ये तो अपने आप बनता है ऐसा कब तक बना क्या।
एक वरदान था सर
उसको,
तीन बातें, अगर अकेले महसूस करो, अगर अकेले महसूस करो तो क्या करो, बिंदु रूप का अनुभव नहीं करो उस समय, तीन चीजें करो। क्या करो क्या करो, तीन चीजें करो। एक तो प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो, अपने ही रमणीक अनुभवों की कहानियों को स्मृति में लाओ, और सर्व संबंधों का रस, ये भी योगी है, पर इस योग से विकर्म विनाश नहीं होंगे, पर उससे तो ठीक है एकदम वियोग से, ये ठीक है। हाँ तो ये वियोग से तो ठीक है, खाली प्राप्तियों के लिए बाबा, ये इसमें रूहरियान करना हो गया, फिर बाप से रूहरियान करना।
बाबा ने वो जो बोला
ना, बहने कहते हैं ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे चालू रहता है कुटिया, ऐसे ऐसे करके बाप से रूहरियान करते हैं वो भी एक योगी है, ऐसे ऐसे बैठ के करते रहते ना कई लोग बाबा से। इसे एक है परम धाम की स्थिति, वो सर्वश्रेष्ठ योग है, एक ही है आंखें तो खुली है ना तो बाप से बातें कर रही है, तो बाप से बातें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, ये भी है, बाप के बच्चे बाप को नहीं सुनाएंगे तो किससे करेंगे। बाबा ने कहा जब तक संगम युग है बाप से छिपाना नहीं है, दो मुरलियां थी इसके ऊपर, छिपाने को छिपाना नहीं, अविनाशी सर्जन है उसको सुना दो। अनिल भाई कहाँ है, वो पीछे है, पीछे है अदृश्यमान। अनिल भाई कुछ बोल दो, बेबी जो बाबा ने कहा तुम तो जैसे कुछ नहीं समझे अभी तक। कर्मातीत अर्थात मुर्दा, शरीर से डिटैच, शरीर से न्यारा, महाकाल।
और इसमें बोला कि मैं आता हूँ, तुम भी आत्मा, तुम भी आते हो, मैं भी आता हूँ, लेकिन अंतर ये है कि तुम शरीर,
मैं गर्भ में प्रवेश नहीं
करता,
ना कृष्ण को सर्वव्यापी है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना मेरे शरीर का कुछ नाम है, ना मेरे आत्मा का कुछ नाम है,
ना कोई शरीर है, ना मेरा कोई शरीर का नाम है। मैं इस तन में आता हूँ, इसका नाम ब्रह्म रखता हूँ, लेकिन मेरा
नहीं है कुछ,
है
ही नहीं। बोलो
स्वयं को दान कर, और दूसरों को सुना है, सबको प्यारा बनेंगे, वो मतलब पंडित वाली
का, हाँ पंडित वाली, हाँ तो प्यार कम हो जाएगा,
दूसरों को सुनाने से सबका प्यार
स्वतः ही मिल जाएगा,
सरों के प्यारे लगे।
और आगे श्वे
माया बड़ी प्रबल है,
माया प्रबल है, जबरदस्त है, महारथियों को भी कड़ी कड़ी भूल करा देती है, चाल चलन प्रत्यक्ष हो जाता है। और चिमन भाई बोलो बोलो बोलो,
ओम शांति कहने से तुमको
घर याद आता है, खुश नसीबी की झलक चेहरा ना, एक कच भूल के बारे में भी था ना, एक कच भूल अर्थात एक कज शब्द का, एक कज नहीं, एक कज अर्थात, एक कज अर्थात मूल नहीं, एक मात्र, फकत एक, ओनली वन, वन विदाउट अ सेकंड, एक ही भूल, मतलब एक कज भूल, संस्कृत नहीं हिंदी शब्द, एक कज, एक कच हिंदी, एक कच, एक मात्र, ओनली वन, फकत एक, हिंदी में भी आ गया है, हिंदी हिंदी में आ गया है, तो एक कच भूल कौन सी है, बाप सर्वव्यापी। और सेंट जेवियर वहाँ पे ढेर जाते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, अगर आएंगे, जब आएंगे तब विनाश हो जाएगा,
ये भी तो भूल है ना, खुद को भूलना भी तो एक भूल है ना,
खुद को भूलना मतलब
आत्मा को भूलना,
आत्मा भूल तो सबसे बड़ी भूल तो वही है,
लेकिन ये एक कज भूल नहीं है,
एक कज भूल वो नहीं है, एक कज भूल केवल एक है, गीता का भगवान सर्वव्यापी, सर्व मतलब सर्वव्यापी की भी बात नहीं है, एक कज में गीता का भगवान, ओनली वन, गीता का भगवान कृष्ण, कृष्ण का नाम डाल दिया की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, कृष्ण गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु, एक तरफ तो ये लिखा और दूसरी तरफ दिखा है कृष्ण की 16108 रानियां थी, इसके लिए गीता के उस महावाक्य को लोगों ने अस्वीकार कर दिया, ये है कचपुर, गीता एक ही है पर उसके ऊपर असंख्य भाष्य लिखे गए हैं, रामानुजाचार्य का भाषण, शंकराचार्य का भाषण, भाष्य, इतने लोगों के भाष्य है गीता पर, तिलक का भाष्य, विनोबा भावे का भाष्य, टैगोर का भाष्य, एक ही गीता उसके इतने भाष्य, इसका मतलब लोग संतुष्ट नहीं है उस गीता से, इसके लिए इतने भाष्य, इतनी टीका लिखी है, इसके लिए ये है एकज भूल, इसके लिए लोग उसे सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि नहीं बना पाए, ये है एकज भूल, धर्म ग्रंथ बन नहीं पाया, रिलीजियस बुक कहते हैं ना बाबा, उस दिन था ना मुझे वही है, एक बाप
है तो कौन सा हिंदी उच्चारण,
एकज भूल इसी के लिए,
तो ये जो बात पहले तो आपने ज्ञान से आने से पहले स्वीकार कर ली थी ना कि कृष्ण ही भगवान
है, मतलब माइंड खुला था कि एक ही है, पर वो कृष्ण भी है, फिर वो राम भी है, फिर वो क्राइस्ट भी है, फिर वो बुद्ध भी है, फिर अवतार भी सत्य है, और ये भी सत्य है, और वो भी सत्य है, और ये सत्य इन सबसे परे भी है,
गीता में पढ़ी है तो इसमें एक बात से मैं नहीं माना, उसमें ये है जिसका जो उपासक उसे
प्राप्त, ये यथा माम प्रत्यंते, जो जिसकी पूजा करता वो उसको प्राप्त करता है, जैसे वो तो बराबर है, राम का भक्त है तो राम का दर्शन होगा, हनुमान का भक्त होगा तो हनुमान के दर्शन होंगे,
तो भी कई मुरलियों बाबा ने कहा कि उस जो भी भक्त जिसको पूजा करते हैं उसको उसके द्वारा मैं ही साक्षात्कार
कराता हूँ, ये गीता के ही महावाक्य है कि उसको जो राम के द्वापर युग से भक्तों को साक्षात्कार, बाबा ने कहा ना भावना का भाड़ा, निश्चय बुद्धि का फायदा, वो सेंट जेवियर के लिए कहा ना, उसके पास जाते तो बीमारियां ठीक होती है। वो कौन ठीक कर रहा है? वो बाप ही ठीक कर रहा है, परंतु उसके द्वारा वो भावना का भाड़ा वहां मिलता
है।
जो जिसकी पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवी देवताओं का दर्शन, राक्षसों की पूजा करोगे तो उनका ही दर्शन, जो जिसकी पूजा करता है उसको उसका दर्शन होता है। इसके लिए
आशुतोष महाराज ये समाधि में अभी तक जलाया
ही हूं। हाँ, वो भी इनकरप्टिबल। क्रिश्चियन में तो नंबर ऑफ ऐसे लिस्ट है जिनकी शरीर मरने के बाद भी ठीक रहे, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। ये स्वामी योगानंद कई लोग तो वो है, ये सब कोई आश्चर्य नहीं है। बाबा ने कहा ये तो प्रकृति है,
11 महीने।
हाँ हाँ,
कल उसका फैसला है।
हाँ,
आशुतोष,
आशुतोष महाराज न्यूज पेपर में आ रहा
है।
संस्था नहीं, अपने आप में सेल्फ, तो ये संस्था से नहीं। और बस 10 बज गए। ओम शांति।